एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दार्शनिक की बात करने वाले हैं जिनके विचारों ने न सिर्फ विज्ञान को देखने का हमारा नजरिया बदला, बल्कि एक आजाद, एक खुले समाज की जो नींव है उसे भी कह सकते हैं मजबूत किया।
हाँ बिल्कुल, सर कार्ल पॉपर की बात करें आप।
जी हाँ, सर कार्ल पॉपर
1902 से 1994 20वीं सदी के मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण विचारकों में से एक, ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ, फिर ब्रिटिश नागरिक बने।
और इनका असर सिर्फ फिलॉसफी तक नहीं रहा, है ना, मतलब हमारी रोजमर्रा की सोच, हमारी जो डिबेट्स होती हैं उन तक पहुंचा है।
बिल्कुल, इनके दो आइडियाज तो बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं। एक विज्ञान में फॉल्सिफिकेशन, जिसे हम मिथ्याकरण कह सकते हैं,
मिथ्याकरण, हाँ।
और दूसरा राजनीति में ओपन सोसाइटी यानी खुला समाज।
और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा कि ये विचार आज भी मतलब शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी लगते हैं।
सही बात है।
हाँ, जब चारों तरफ से इतनी सूचनाएं हैं, दावे हैं, कभी कभी तो सीधी सीधी गलत जानकारी भी है।
हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है।
बिल्कुल, तो ऐसे में पॉपर हमें जैसे एक टूल देते हैं ये परखने के लिए कि भाई किस पर यकीन करें, कैसे करें, कैसे एक व्यक्ति जो खुद तानाशाही के दौर से गुजरा, उसने हमें ज्ञान और आजादी के रिश्ते को इतने गहरे ढंग से समझाया। चलिए इसी के आसपास आज बात करते हैं।
जरूर जरूर। पॉपर की कहानी वो शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत के वियना से।
वियना उस समय तो वो एक इंटेलेक्चुअल हब था।
बिल्कुल, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का केंद्र, कला, संगीत, विज्ञान, दर्शन, सब कुछ वहां फल फूल रहा था। लेकिन वो एक बड़ी उथल पुथल का दौर भी था।
हाँ, पुराने साम्राज्य खत्म हो रहे थे।
हाँ, और नई विचारधाराएं जैसे मार्क्सवाद, फासीवाद, वो जोर पकड़ रही थीं। काफी मतलब रेडिकल थीं।
और विज्ञान में भी तो बड़ी क्रांति चल रही थी, आइंस्टाइन का सिद्धांत आ गया था।
हाँ, आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने तो न्यूटन की जो सदियों पुरानी फिजिक्स थी उसकी निश्चितता पर ही सवाल उठा दिया था। दिखा दिया कि जिसे हम सच मानकर बैठे हैं वो भी बदल सकता है।
तो इसी माहौल में पॉपर सोच रहे थे, लिख रहे थे।
जी, और वियना में उस समय वियना सर्कल नाम का एक ग्रुप बहुत एक्टिव था फिलोसोफर्स का।
हाँ, लॉजिकल पॉजिटिविस्ट्स।
हाँ, तार्किक प्रत्यक्षवादी। उनका मानना था कि कोई भी बात तभी मीनिंगफुल है जब उसे आप अनुभव से, एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सकें, सत्यापित कर सकें।
अच्छा,
पॉपर विज्ञान को तो मानते थे पर ये वेरिफिकेशन वाले आइडिया से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनके लिए सवाल ये नहीं था कि किसी थ्योरी को सही कैसे साबित करें।
तो फिर क्या था?
उनके लिए बड़ा सवाल था कि विज्ञान और जो विज्ञान नहीं है, मतलब नॉन साइंस या स्यूडो साइंस, उसके बीच लकीर कैसे खींची जाए। ये डिमार्केशन प्रॉब्लम थी उनके लिए।
अच्छा, ये फर्क करना कि क्या साइंटिफिक है और क्या नहीं।
बिल्कुल, और यहीं से उनके अपने विचार पनपने शुरू हुए। आइंस्टाइन उनके लिए एक तरह से मॉडल थे।
क्यों आइंस्टाइन? क्यों?
क्योंकि आइंस्टाइन की थियोरीज ऐसी भविष्यवाणियां करती थीं जिन्हें टेस्ट किया जा सकता था, मतलब ऐसी कोशिश की जा सकती थी कि उन्हें गलत साबित कर दिया जाए।
अगर एक्सपेरिमेंट भविष्यवाणी से मैच ना करे तो थ्योरी पर सवाल उठेगा।
एग्जैक्टली, और इसी समय यूरोप में, खासकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, वो तानाशाही का खतरा बढ़ रहा था।
हाँ,
नाजीवाद।
हाँ।
इस माहौल ने और बाद में जो भयानक त्रासदी हुई उसने पॉपर के राजनीतिक विचारों को बहुत गहराई से शक्ल दी। वो हर तरह की बंद, हर धर्मी विचारधाराओं के खिलाफ हो गए।
उनके अपने जीवन के बारे में भी कुछ बताइए, उनका बैकग्राउंड कैसा था?
पॉपर का जन्म वियना में ही हुआ था, एक पढ़े लिखे, काफी संपन्न यहूदी परिवार में। हालांकि परिवार ने बाद में लूथरन धर्म अपना लिया था।
अच्छा,
घर में किताबें थी, संगीत था, माहौल काफी कल्चर्ड था। और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ बड़ई गिरी मतलब कैबिनेट मेकिंग भी सीखी।
अरे वाह, ये तो काफी अलग बात है।
हाँ, शायद इससे उन्हें वो प्रैक्टिकल नॉलेज करके सीखने की अहमियत समझ आई
हो सकता है।
और एक और घटना उनकी युवा दिनों की है, वो कुछ समय मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे।
अच्छा,
हाँ, टीनेज में। लेकिन 1919 में वियना में एक हिंसक राजनीतिक प्रदर्शन हुआ, उसमें कुछ लोग मारे गए। इस घटना ने उनका मोह भंग कर दिया।
क्यों, क्या हुआ?
उन्हें लगा कि ऐसी विचारधाराएं जो अपने सच होने का इतना पक्का दावा करती हैं और जिनके लिए इंसानी जान की भी कीमत नहीं, वो खतरनाक हो सकती हैं। इसने उन्हें किसी भी थ्योरी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से रोका, आलोचनात्मक बनना सिखाया।
ये तो काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा होगा।
हाँ, और सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब 1938 में नाजियों ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जिसे अंशलुस कहते हैं।
हाँ, अंशलुस।
क्योंकि उनकी जड़ें यहूदी थीं, उन्हें यूरोप छोड़ना पड़ा। वो न्यूजीलैंड चले गए।
न्यूजीलैंड।
हाँ, वहाँ उन्होंने कैंटरबरी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, और इसी मुश्किल समय में, निर्वासन में, उन्होंने अपनी वो महान किताब लिखी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज,
खुला समाज और उसके दुश्मन। ये किताब तो बहुत प्रभावशाली मानी जाती है।
बिल्कुल, ये सिर्फ कोई अकादमिक किताब नहीं है, ये तानाशाही के खिलाफ और लिबरल डेमोक्रेसी के पक्ष में एक बहुत ही जोशीला, पैशनेट तर्क है।
और फिर बाद में वो इंग्लैंड आ गए।
हाँ, 1946 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE में। वहाँ वो लॉजिक और साइंटिफिक मेथड के प्रोफेसर बने, रिटायरमेंट तक वहीं रहे, और 1965 में उन्हें नाइटहुड भी मिला, सर की उपाधि।
तो चलिए अब उनके सबसे फेमस आइडिया पर आते हैं, मिथ्याकरण या फॉल्सिफिकेशन। ये उन्होंने अपनी किताब द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में दिया था। ये क्या है असल में?
हाँ, ये पॉपर का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार माना जाता है। उन्होंने कहा कि देखो, विज्ञान ऐसे आगे नहीं बढ़ता कि हम थ्योरीज को सही साबित करते जाएं।
अच्छा,
तो फिर कैसे बढ़ता है? विज्ञान की असली पहचान, उसका हॉलमार्क ये है कि उसकी थ्योरीज गलत साबित होने लायक हों, मतलब टेस्टेबल हों, फॉल्सिफाइबल हों।
गलत साबित होने लायक, इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि कोई थ्योरी साइंटिफिक तभी है जब हम ये सोच सके कि अच्छा, ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन हो सकता है जो अगर हो गया तो ये थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। अगर कोई थ्योरी ऐसी है जिसे दुनिया की कोई भी घटना, कोई भी नतीजा गलत साबित ही नहीं कर सकता, तो पॉपर के हिसाब से वो विज्ञान नहीं है। वो या तो सूडो साइंस है, छद्मा विज्ञान, या फिर वो आस्था का मामला है।
तो जैसे ज्योतिष है या कुछ तरह की साइको एनालिसिस की थ्योरीज हैं जो हर बात को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लेती हैं।
हाँ, बिल्कुल,
और कभी गलत साबित नहीं हो सकती हैं।
हाँ,
तो पॉपर कहेंगे कि ये साइंटिफिक नहीं है।
एग्जैक्टली, यहीं पर वो विज्ञान और गैर विज्ञान के बीच वो साफ लकीर खींच रहे थे। इसी को उन्होंने सीमांकन की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ डीमार्केशन कहा।
ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बहस नहीं है ना, ये तो आज भी बहुत काम की चीज लगती है।
बिल्कुल काम की है। आज जब फेक न्यूज, झूठे दावे इतने ज्यादा हैं, तो ये हमें एक तरीका देता है असली वैज्ञानिक रिसर्च और सिर्फ दावों में फर्क करने का।
कैसे?
अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है जिसे गलत साबित करने का कोई तरीका ही नहीं बताया जा सकता, तो पॉपर हमें सिखाते हैं कि उस पर शक करो, चाहे वो सुनने में कितना भी अच्छा क्यों ना लगे।
लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब क्या वैज्ञानिक सच में अपनी पसंदीदा थ्योरीज को गलत साबित करने में ही लगे रहते हैं? ज्यादातर तो उन्हें सही साबित करने की कोशिश करते दिखते हैं।
देखिए, ये एक वैलिड पॉइंट है, और पॉपर के इस विचार की आलोचनाएं भी हुई हैं, हम उन पर आएंगे।
हाँ,
थॉमस कुन जैसे विचारकों ने कहा कि विज्ञान हमेशा ऐसे काम नहीं करता, पर पॉपर का जो मूल तर्क था वो ये था कि साइंटिफिक प्रोग्रेस का रास्ता आखिर में गलतियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने से ही गुजरता है, न कि सिर्फ अपनी जो मान्यताएं हैं, अपने जो बायस है, उन्हीं को कंफर्म करते रहने से, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं।
कंफर्मेशन बायस।
हाँ
हाँ, ये तो बहुत होता है।
हाँ, उन्होंने खुद कहा है, मैं कोट कर रहा हूँ, यदि हम आलोचनात्मक नहीं हैं, तो हमें हमेशा वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। हम पुष्टिकरणों की तलाश करेंगे और उन्हें पाएंगे, और हम उन चीजों से नजरें फेर लेंगे जो हमारे प्रिय सिद्धांतों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
वाह, ये बात तो आज के सोशल मीडिया के जमाने में और भी ज्यादा सच लगती है। हम सब अपने इको चैम्बर्स में रहते हैं।
बिल्कुल। अब आते हैं उनके दूसरे बड़े आइडिया पर, खुला समाज, जो उन्होंने द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में बताया।
हाँ, ओपन सोसाइटी, ये क्या है?
देखिए, पॉपर के लिए खुला समाज एक ऐसा समाज है जो व्यक्ति की आजादी, विचारों की विविधता, आलोचनात्मक बहस और टॉलरेंस, मतलब सहिष्णुता, को सबसे ज्यादा महत्व देता है।
अच्छा,
ये ऐसा समाज है जो मानता है कि किसी एक व्यक्ति या ग्रुप के पास अंतिम सत्य नहीं है, इसलिए नीतियों पर, विचारों पर खुली बहस होनी चाहिए, असहमति की गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए।
और इसके विपरीत क्या होता है? बंद समाज।
हाँ, बंद समाज, क्लोज्ड सोसाइटी, ये किसी एक विचारधारा, किसी एक नेता या ऐसे नियम कानूनों पर आधारित होती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जिन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहाँ आलोचना या असहमति की कोई जगह नहीं होती।
और पॉपर ने इसके लिए प्लेटो, हेगेल, मार्क्स जैसे बड़े दार्शनिकों की भी आलोचना की।
हाँ, उन्होंने काफी तीखी आलोचना की। उन्हें लगा कि इन महान विचारकों के लिच्चारों ने शायद अनजाने में ही ऐसे बंद समाजों को बढ़ावा दिया है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता से ज्यादा महत्व किसी सामूहिक लक्ष्य या ऐतिहासिक नियति को दिया जाता है।
और उन्होंने बड़ी बड़ी क्रांतियों के बजाय क्रमिक सामाजिक इंजीनियरिंग की बात की। ये थोड़ा समझाइए, पीसमील सोशल इंजीनियरिंग।
हाँ, इसका मतलब है कि समाज में एकदम से बहुत बड़े जोखिम भरे और ऐसे बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिन्हें वापस ना लिया जा सके। बजाय इसके छोटे छोटे सोचे समझे सुधार करने चाहिए। इसे ऐसे सोचिए जैसे पूरे घर को एक बार में गिराकर नया बनाने के बजाय आप धीरे धीरे एक एक कमरे को ठीक करें, देखें कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं,
और जरूरत पड़े तो आप पीछे हट सकें या रास्ता बदल सकें।
बिल्कुल, ताकि आप नतीजों को देख सकें, परख सकें। पॉपर का मानना था कि ये जो बड़े बड़े यूटोपिया बनाने का सपना होता है ना, कि हम एक आदर्श समाज बना देंगे।
हाँ, स्वर्ग धरती पर उतार देंगे।
हाँ बिल्कुल, वो कहते थे कि इसके चक्कर में अक्सर तानाशाही आ जाती है क्योंकि फिर आप असहमति बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने अपनी एक और किताब द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म में इसी विचार की आलोचना की है कि इतिहास के कुछ नियम होते हैं जिन्हें जानकर भविष्य बनाया जा सकता है।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लगती है, मतलब सुधार धीरे धीरे हो ताकि हम सीख सकें। ये तो उनके विज्ञान वाले दर्शन से भी जुड़ता है।
हाँ बिल्कुल जुड़ता है, जैसे विज्ञान में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, गलतियां सुधारते हैं,
वैसे ही समाज में भी होना चाहिए।
एकदम, उनके पूरे दर्शन को इसीलिए आलोचनात्मक तर्क बुद्धिवाद या क्रिटिकल रैशनलिज्म कहते हैं।
क्रिटिकल रैशनलिज्म।
हाँ, इसका सार यही है कि ज्ञान सर्टनिटी के दावे से नहीं बढ़ता बल्कि कंजेक्चर यानी अनुमान लगाने और फिर उन अनुमानों का कठोर क्रिटिसिज्म करने, उन्हें रिफ्यूट करने, खंडन करने की कोशिश करने से आगे बढ़ता है।
और ये मानना कि हम गलत हो सकते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसे फॉलिबिलिज्म या भ्रांतिवाद कहते हैं, मतलब ये मानना कि हमारा आज का ज्ञान अधूरा है, शायद गलत भी हो और इसे सुधारा जा सकता है। ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता है।
पॉपर की विरासत सिर्फ किताबों या यूनिवर्सिटीज तक ही नहीं रही जैसा आपने शुरू में कहा था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, असल दुनिया पर भी उनका काफी असर रहा है। शीत युद्ध के दौरान उनके खुले समाज के आइडिया ने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज को एक मजबूत इंटेलेक्चुअल डिफेंस दिया।
अच्छा।
और आज भी दुनिया भर में जो लोग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं वो पॉपर से प्रेरणा लेते हैं।
वो जॉर्ज सोरोस वाली बात भी है ना?
हाँ बिल्कुल, मशहूर फाइनेंसर और फिलेंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस, जो LSE में पॉपर के स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने पूरे ग्लोबल नेटवर्क का नाम पॉपर के सम्मान में ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस रखा है।
वाह।
जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने का काम करती है।
उनके कुछ कोट्स भी काफी मशहूर हैं, जैसे वो सहिष्णुता वाला पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस।
हाँ, वो द ओपन सोसाइटी से है। बहुत ही मतलब सोचने वाला कोट है। असीमित सहिष्णुता का परिणाम सहिष्णुता का गायब होना ही होगा। यदि हम असहिष्णु लोगों के प्रति भी असीमित सहिष्णुता दिखाते हैं, यदि हम एक सहिष्णु समाज को असहिष्णु के हमले से बचाने के लिए तैयार नहीं है तो सहिष्णु नष्ट हो जाएंगे और उनके साथ सहिष्णुता भी।
ये तो बड़ा पेशीदा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें असहिष्णु होना चाहिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि सहिष्णुता को बचाने के लिए हमें उन लोगों का विरोध करने के लिए तैयार रहना होगा जो सहिष्णुता को ही खत्म करना चाहते हैं। मतलब सहिष्णुता की भी एक सीमा होनी चाहिए जब वो खुद खतरे में हो।
ये तो आज के समय में बहुत ही रेलेवेंट सवाल है कि ये बैलेंस कैसे बनाया जाए।
बिल्कुल।
पॉपर के जीवन से जुड़े कुछ और भी रोचक पहलू हैं, जैसे उनका संगीत से लगाव।
हाँ, वो संगीत के बहुत बड़े प्रेमी और जानकार थे, खासकर क्लासिकल म्यूजिक के। लेकिन जो मॉडर्न अटोनल म्यूजिक था उसके वो आलोचक थे।
क्यों?
उन्हें लगता था कि उसमें वो लॉजिकल स्ट्रक्चर और इमोशनल डेप्थ नहीं है जो वो संगीत में ढूंढते थे। और हाँ, वो विटगेंस्टाइन के साथ वाला झगड़ा।
हाँ हाँ, पोकर इंसिडेंट, क्या था वो?
कहते हैं कैम्ब्रिज में 1946 में एक सेमिनार था, पॉपर और लुडविग विटगेंस्टाइन दोनों बड़े दार्शनिक। किसी फिलोसॉफिकल पॉइंट पर बहस इतनी बढ़ गई।
अच्छा।
कि विटगेंस्टाइन गुस्से में फायरप्लेस के पास रखी लोहे की छड़ी मतलब पोकर लहराने लगे और फिर गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। अब इस कहानी के कई वर्शन हैं, पर यह दिखाता है कि पॉपर कितने मतलब अपने विचारों को लेकर पैशनेट थे और बहस करने से हिचकते नहीं थे।
दार्शनिकों के बीच भी ऐसी गर्मागर्मी हो जाती है।
हो जाती है, पर अपने इस इंटेलेक्चुअल थोड़ी जुझारू छवि के बावजूद पॉपर खुद को खुश दार्शनिक मानते थे। उन्हें इंसान की तर्क करने की क्षमता पर, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर गहरा विश्वास था, आशावादी थे।
जाहिर है इतने प्रभावशाली और कभी कभी विवादास्पद विचारों वाले दार्शनिक की आलोचनाएं भी हुई होंगी, खासकर वो फॉल्सिफिकेशन वाले सिद्धांत की।
हाँ बिल्कुल हुई। जैसा आपने पहले पूछा भी था, कई लोगों ने कहा कि विज्ञान असल में ऐसे काम नहीं करता कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ और पूरी थ्योरी गलत साबित हो गई। अक्सर वैज्ञानिक अपनी मेन थ्योरी को बचाने के लिए छोटी मोटी एडजस्टमेंट करते हैं, सहायक परिकल्पनाओं में बदलाव करते हैं। इसे डुहेम क्विन प्रॉब्लम भी कहते हैं।
अच्छा,
और थॉमस कुन ने तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ही दिया कि वैज्ञानिक एक लंबे समय तक एक स्थापित फ्रेमवर्क, एक पैराडाइम के अंदर ही काम करते हैं और छोटी मोटी गड़बड़ियों को नजरअंदाज करते हैं, जब तक कि संकट बहुत बढ़ ना जाए।
और जो उन्होंने प्लेटो, हेगल, मार्क्स की आलोचना की, उस पर भी सवाल उठे।
हाँ, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि पॉपर ने इन दार्शनिकों के विचारों को काफी सरलीकृत कर दिया, मतलब ओवर सिंप्लीफाई किया या एक तरफा दिखाया, ताकि वो उनके खुले समाज के दुश्मन वाले नैरेटिव में फिट बैठे।
और राजनीतिक रूप से?
राजनीतिक तौर पर खासकर लेफ्ट लीनिंग थिंकर्स ने उनकी मार्क्सवाद की आलोचना को शीत युद्ध के समय में पूंजीवाद का एक आइडियोलॉजिकल डिफेंस माना। कुछ ये भी मानते हैं कि उन्होंने प्रेरण की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन का कोई संतोषजनक हल नहीं दिया।
प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, वो क्या है?
मतलब ये सवाल कि हम अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में कैसे निश्चित हो सकते हैं। पॉपर ने कहा कि हम निश्चित हो ही नहीं सकते, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर सकते हैं। पर आलोचक कहते हैं कि फिर हम उन थ्योरीज पर भरोसा क्यों करें जो अभी तक गलत साबित नहीं हुई हैं?
ये भी सोचने वाली बात है। तो इन सब आलोचनाओं के बावजूद पॉपर का स्थायी महत्व क्या है? क्या है जो हमें आज भी उनसे सीखना चाहिए?
मेरे ख्याल में पॉपर का सबसे बड़ा और स्थायी संदेश यह है कि प्रगति, चाहे वो ज्ञान में हो या समाज में, वो सर्टेनिटी के दावे से नहीं आती।
तो फिर किससे आती है?
वो आती है अपनी गलतियों को मानने की हिम्मत से, उनसे सीखने की इच्छा से, खुलापन, क्रिटिकल डिस्कशन, और ये मानना कि हम सब गलत हो सकते हैं, फॉलिबिलिज्म, यही आगे बढ़ने का रास्ता है।
उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं है, एक सफर है।
बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली यात्रा जिसमें हम अपनी समझ को बेहतर बनाते जाते हैं, गलतियां सुधारते जाते हैं।
और उन्होंने साइंटिफिक रैशनैलिटी और लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन बनाया।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिखाया कि जिस तरह की ओपन डिबेट और क्रिटिसिज्म साइंस को आगे बढ़ाता है, वैसा ही माहौल एक हेल्दी सोसाइटी के लिए भी जरूरी है।
ज्ञान और स्वतंत्रता का गहरा रिश्ता,
हाँ, यही पॉपर को आज भी इतना जरूरी बनाता है।
तो चलिए आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ रोकते हैं, जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं।
जरूर।
आज के इस डिजिटल युग में, जहां सच और फैक्ट पर इतनी बहस है, जहां हम सब अपने अपने सूचना के बुलबुलों में, इको चैम्बर्स में जी रहे हैं, वहां पॉपर का ये आलोचनात्मक तर्क बुद्धिवाद, ये फॉल्सिफिकेशन का सिद्धांत हमें असली ज्ञान को झूठे दावों और प्रोपेगेंडा से अलग करने में कैसे मदद कर सकता है?
बहुत मौजू सवाल है।
और दूसरा, उनके सहिष्णुता के विरोधाभास को ध्यान में रखते हुए, हम खुले विमर्श की रक्षा करने और असहिष्णुता का मुकाबला करने के बीच वो नाजुक संतुलन कैसे बना सकते हैं?
ये सवाल दिखाते हैं कि पॉपर के साथ हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। उनके विचार हमें आज की मुश्किलों को समझने और उनका सामना करने के लिए लगातार उकसाते रहते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्तर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।